हमारा अगला टॉपिक है तहारत। आप देखिए कि नमाज की चाबी तहारत है। जैसे घर है ना इतना बड़ा, छोटी सी चाबी ना हो तो आप घर में नहीं दाखिल हो सकते ना। तो नमाज की शर्त या शर्त अव्वल तहारत है। कोई शख्स कलमा पढ़ता है तो सबसे पहले उसको पाक होना होता है। तो इंशाल्लाह अब यहाँ हम बाकायदा नमाज शुरू करने से पहले अहकाम तहारत देखेंगे। और तहारत या तोहर कह लीजिए, वो कैफियत है जिसमें आप नमाज अदा कर सकते हैं। बहुत सारी इसकी डिटेल्स आएंगी और हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाए बगैर कम से कम इतने अहकाम पढ़ लें जो कि नमाज से ज़रूरी हैं। अहकाम तहारत, पानी के अहकाम, यानी सबसे पहले बात है कि तहारत करनी किससे है, पानी से। तो पानी कौन सा पाक है, कौन सा पाक नहीं, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। नमाज के लिए वुजू शर्त है, वुजू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। इसी तरह वुजू के लिए पानी का पाक होना शर्त है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, क्या हम बिदौ, एक जगह है कि कुएं से वुजू कर सकते हैं? ये एक ऐसा कुआं है जिसमें हैस वाले कपड़े, कुत्तों का गोश्त और बदबूदार अशिया बाज़ुकात गिर जाती हैं। बिदा का कुआं ढहलवान पर था और बारिश वगैरह का पानी इन चीज़ों को बहाकर कुएं में ले जाता था। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, अलमाउ तहूरुन ला युनजिसहु शैयुन, इसका पानी पाक है और इसमें दूसरी चीज़ों को पाक करने की सलाहियत है, इसे कोई चीज़ पाक नहीं करती। क्या मतलब है कुएं का पानी पाक है? अभी इन सब पे हम बात करते हैं बाद में, सिर्फ एक दफ़ा आप एक एक मौजू को सुन लीजिए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरिया और समंदर का पानी पाक करने वाला है और इसका मुर्दार यानी मछली हलाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्बी को ठहरे हुए पानी में गुसल करने से मना फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े पानी में पेशाब करने और फिर इससे गुसल करने से मना फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े पानी में पेशाब करने और फिर इससे वुजू करने से मना फरमाया। और फिर इसमें अगली बात क्या है कि पानी की ये सारी मुख्तलिफ कैफियत पढ़ने के बाद आपको मुझे जो बात समझ आती है उसका खुलासा क्या है? खड़ा पानी नापाक है, बट वो पानी जो बह रहा है, जैसे दरिया में, नहर में, समंदर में पीछे से और पानी आ रहा है, वो पाक है। इस तरह कुएं के बारे में भी आप जानते होंगे कि शुरू में जो पानी होता है वो हटा दें तो नीचे से साफ पानी आ जाता है। ठीक है, कुएं का पानी पाक भी होता है, पाक करता भी है। वजह क्या है कि उसकी मकदार 227 किलोग्राम से ज़ायद होती है। इसको कुल्लतैन कहते हैं और किसी नजासत के गिरने से इसका वसफ यानी रंग या बू और जायका तब्दील नहीं होता। हाँ, अगर इससे कम मकदार वाले पानी में कोई नजासत गिर जाए तो फिर इससे गसल या वजू नहीं करना चाहिए, चाहे रंग भी तब्दील ना हो और उसकी बू भी ना बदले। और 1 किलोग्राम 1 सेर 8 तोले के बराबर होता है। तो पानी के बारे में ये बात समझ लीजिए कि थोड़ा पानी और खड़ा पानी, इनकी शरायत है। इसके बरक्स जो पानी बहता है, जो खुला पानी है, वो पाक होता है। अब ये अहदीस जो हमने अभी पढ़ी, इन सब को सामने रखकर आपको शरीयत का एक मिजाज भी समझ आता है। लिखिएगा क्या? पहली बात देखिए कि नमाज के लिए वुजू चूंकि शर्त है और वुजू के बगैर नमाज नहीं होती, तो ठहरे पानी में वुजू मना है। अच्छा, लफ्ज़ वुजू बोल रही हूँ, हम क्या बोलते हैं, वजू करना है? नहीं, वजू उस बर्तन को कहते हैं जिसमें पानी हो वुजू का। तो लफ्ज़ जैसे नाउन एंड वर्ब होता है ना, तो वुजू और वजू में यही फर्क है। फिर इस तरह दरिया और समंदर का पानी पाक होता है, कुएं का पानी भी पाक होता है। तो आपने, मैंने जब भी वजू करना है तो देख लेना है कि पानी साफ है। अमूमन सफर के दौरान इन चीजों का तजुर्बा होता है। अव्वल तो कोशिश किया करें कि बावजू हों, घर से निकलें तो वजू करके जाएं। मसा कर लीजिए, पाँव पे सॉक्स पहनने होंगे, पानी की कोई बॉटल है पास उससे वजू कीजिए। कहीं भी बाहर खुली जगह पे करें तो बस इन शरायत को सामने रखिए कि पानी का रंग ना बदला हो, उसमें कोई बदबू ना आ चुकी हो और वो बह रहा हो। और ये सारी जो अहादीस हैं इनके रेफरेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, एक एक चीज़ आपके सामने है। अल्लाह करे कि हम इनको पूरे शौक और ज़ौक से पढ़ भी सकें, और अगर जिनके पास किताब नहीं वो ज़रूर किताब हासिल करें क्योंकि उससे आपको शरह सदर ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। फिर इसके बाद है रफ़ए हाजत के आदाब और मसाइल, यानी टॉयलेट यूज़ करना क्या उसका इस्लामिक मैनरिज्म है, और उसके बाद और ख़ास तौर पर फिर यहाँ बच्चों को ट्रेन कीजिए। आजकल टॉयलेट्स जिस तरह से बनते हैं, और जो खास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज में टॉयलेट्स में पानी नहीं होता, तो इस्तंजा कैसे करना और ये कैसे फरागत हासिल करना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी अहम है। और आप देखिए कि इस बुक में जो भी एक भी हदीस है ना, सब ऑथेंटिक है। इसलिए शरह सदर के साथ आप बुक में से हर एक रेफरेंस देख सकते हैं। मैं हर हदीस का रेफरेंस नहीं बोल रही या नहीं बोलती, कहीं कभी बोल दूँ तो इस वजह से कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बुक में भी है। तो आप पूरे यकीन से लिखें और मेरी बात को ऐसे सुने कि जिसमें आपको मजीद जहन खुलने का एहसास हो और बोझ ना महसूस हो अपने ऊपर। तो आइए देखते हैं कि रफाए हाजत के आदाब क्या हैं और मसाइल। पहली बात है बैतुल खला में जाते वक्त की दुआ। हज़रत अनस रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफाए हाजत के लिए बैतुल खला में दाखिल होने का इरादा फरमाते तो क्या पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ए अल्लाह, यकीनन मैं तेरी पनाह पकड़ता हूँ नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों के शर से, यानी मेल एंड फीमेल्स। ये बुखारी की रिवायत है 142 और मुस्लिम की रिवायत है 375। क्यों? इसलिए कि बैतुल खला जिन्नों और शैतानों के हाजिर होने की जगह है। इसीलिए आपने एक और रिवायत में फरमाया, जब तुम बैतुल खला में जाओ तो कहो आऊज़ु बिल्लाही मिनल खुबुसी वल खबाइस। मैं अल्लाह तआला की पनाह में आता हूँ नर और मादा खबीस जिन्नों के शर से। क्या पता चला कि मेल एंड फीमेल भी होते हैं इसमें, और खबीस और तैयब भी होते हैं। और ये रिवायत जो ये अबू दाऊद की रिवायत नंबर 6 है। तो पहली बात तो यहाँ ये समझिए कि ये चीज़ें गंदी होती हैं। ज़रा आज हमारे घरों के जो स्टाइल है उसमें देखिए, टॉयलेट के बारे में कितना फिक्र होता है। मेरा ख्याल है कि अपने कमरे से ज़्यादा फिर हम जिन्नों जिन्नियों के कमरे से जाते हैं। तो आज से अपने टॉयलेट को कह दीजिए ये जिन्नों का बेडरूम है, जिन्नियों का बेडरूम है। बिला वजह वहाँ रहना, बैठना, बातें करना, वहाँ बैठकर कंप्यूटर ही क्या, अब तो फ़ोन अंदर ले जाना। पहले लोग मैगजीन पढ़ते थे, किसी के घर में जाना और वॉशरूम में नॉवेल्स का रैक रखा होना, इतनी घिन आती थी। अब चूंकि हर एक का अपना बाथरूम है, अब यूरोप में रहकर तो ऐसा कोई कर नहीं सकता अमूमन, क्योंकि लिमिटेड स्पेस होती है। लेकिन जिनके हर घर में हर बेडरूम के साथ बाथरूम अलग है, ये भी एक बहुत बिग इशू है हमारे बच्चों की पेरेंटिंग स्टाइल में कि अपने अपने बाथरूम में वो घंटों खेलते रहें, कूदते रहें, अंदर बातें करें। तो इससे रुकिए, जितना जल्दी बैतुल खला से निकल सकें बेहतर है। अल्लाह ना करे मौत आई तो लोग क्या कहेंगे, कहाँ बहुत है। तो कोई भी इंसान ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करेगा। और ये दुआएं मांगने से फ़ायदा क्या होगा? आपने फरमाया कि बाहर वालों से तो तुमने पर्दा कर लिया, अब जिन्नों से भी कर लो। बाहर वालों से पर्दा कब होता है? जब आप डोर लॉक कर लेते हैं, बंद करते हैं। ये दुआ पढ़कर अंदर जाइए तो कोई ऐसी आसेब की कैफियत, जिन्नाती असर की कोई फीलिंग्स आपको इंशाल्लाह ताला नहीं आएंगी। फिर बैतुल खला से निकलते वक्त की दुआ हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक लफ्ज़ है बस, गुफरानक, तेरी बख्शिश। सूरत बकरा की भी आखिरी आयतों में ना कि अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश चाहता हूँ, ये तो हम कहते हैं ना, लेकिन असल लफ्ज़ क्या है, गुफरानक, तेरी बख्शिश। ये रिवायत भी आपको मुख्तलिफ जगह पे मिल सकती है, इब्ने खुज़ैमा की रिवायत नंबर 69 है। अब ये तो थी दुआएं, ये सभी को आती हैं, मेरा ख्याल है सब लोग पढ़ते भी हैं। जाने के वक्त तो पढ़ ली इस सोच के साथ कि जिन जिन्नियां वहां हैं। सवाल ये कि बाहर आते हुए गुफरान का क्यों कहा, कभी सोचा आपने? पढ़ते तो होंगे ना, क्या वजह हो सकती है टॉयलेट से बाहर आते हुए गुफरान का? ऐसी अपना इंटेलेक्ट सोचिए, क्योंकि हमारे दीन की कोई बात बिला वजह नहीं है। इसलिए जाते हुए पढ़ी के अंदर जिन्नात से बच जाए, बाहर आते गुफरान का क्यों, कोई चीज चिमट ना जाए। देखिए मुफस्सरीन ने और मुहद्दिसीन ने इसका जवाब दिया, टॉयलेट वो जगह है जहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकता बंदा, तो बंदा बाहर आके इस पे माफ़ी मांगता है कि अल्लाह मेरा इतना वक्त तेरे जिक्र के बगैर चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसा बंदा शऊर वाला नहीं बन जाता कुरान सीखते और पढ़ते हुए। जी बिल्कुल ऐसे ही अपने बच्चों को भी ये फीलिंग्स दिया करें। देखिए दुआएं तो हम सिखाते हैं, अब वजह दुआएं भी सिखाना शुरू करें, फिर आपको ज़्यादा नहीं कहना पड़ेगा, वो खुद ब खुद अल्लाह की रहमत से वो काम करेंगे। फिर इसके बाद देखिए कुछ मसाइल, और ये भी फिर कहूंगी कि अपने छोटे छोटे बच्चों 8, 9, 10 साल की उम्र के, जो खास तौर पर अब स्कूल्स में जाने लग गए, बाहर जा रहे हैं, पॉटी ट्रेन हो चुके हैं, खुद अपने आप को साफ कर लेते हैं, उनके साथ जरूर ये बातें डिस्कस कीजिए। वो कौन सी है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कज़ाए हाजत के लिए आओ तो किबले की तरफ मुंह करके ना बैठा करो बल्कि पीठ करो, यानी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि फ्रंट जो है वो किबले की तरफ ना हो। अब कोई मजबूरी ऐसी बन गई कि जिसमें कोई जगह ही नहीं, जैसे जगह ही बहुत तंग है तो फिर वो और बात है, इसमें इंशाल्लाह खुला मसला आगे भी आएगा, लेकिन ओपन एयर में कोई बैठे तो बिल्कुल मना है। लेकिन दीवार की ओर, जैसे अब हमारे टॉयलेट्स हैं तो इसमें अगर किबले की रुख तरफ हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। नबी सल्लम से दोनों चीज़ें सहाबी के तरफ से हमें मिलती हैं, और किबले की तरफ मुंह करके जान के ना करे, कोई बेदबी का अंदाज खुद से इख्तियार ना करे। और ये जो रिवायत है ये अबू दाऊद की है, और बहुत सारे रेफरेंसेस आपको इसके इंशाल्लाह तरह मिल जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात क्या है कि आपने गोबर और हड्डी के साथ इस्तंजा करने से मना फरमाया। गोबर यानी जानवर की जो जिस्म की बाकियात है और उसको सुखा लिया जाता है एज अ फ्यूल, देहातों में अक्सर ऐसे ही होता है, और हड्डी तो आप जानते ही हैं अरब लोग गोश्त खाते थे, ऊँटों की बड़ी बड़ी हड्डियाँ थी वहीं फेंक देनी, तो बाद में लोग जब अपने तहारत के लिए जाते थे तो उसको यूज़ कर लेते थे, मना है। और आपने फरमाया कि ये तुम्हारे जिन भाइयों की खुराक है, और गोबर इसलिए कि वो तो वैसे ही वेस्ट है, उसमें जर्म्स हो सकते हैं, उसमें गंदगी हो सकती है। और इसी तरह से ये रिवायात जो हैं इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि हम कितना ज़्यादा छोटी छोटी बातों में दीन के मुकल्लफ हैं। जो लोग दीन का पूरा इल्म नहीं ले पाते ना, फिर वो अपने आप को परेशान रखते भी हैं। और ये सही मुस्लिम की रिवायत है जो आपको बताई गई है, और आप इसमें देखेंगे कि किस तरीके से एक बंदा अपने आप को इस तरह महसूस करता है कि मेरा दीन इतना मुकम्मल है कि बाथरूम में जाने तक की बातें सिखाता है। ये 262 नंबर सही मुस्लिम की थी। और एक और रिवायत जो सही मुस्लिम में 269 है, उसकी रोशनी में हमें अल्लाह के नबी की क्या बात पता चली। आपने फरमाया कि लानत का सबब बनने वाले दो कामों से बचो। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हों ने पूछा वो क्या है? आपने फरमाया लोगों के रास्ते में और इनके साए की जगहों में रफाए हाजत ना करो। यानी आप देहातों में या गांव में जाएं तो आपको नजर आ जाएगी ये बात कि अमूमन लोग रातों को फारिग होते हैं, अगर ऐसी जगहों में गंदगी डालेंगे तो जाहिर है गंदगी होगी। साए की जगह वो है जहां दिन में लोग बेचारे साए में बैठेंगे, तो आप देखिए कितना वेल मैनर्ड दीन है। तो लिहाजा लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, इससे लोगों को मुश्किल होती है। फिर एक और मसला, अल्लाह के नबी ने दाएं हाथ से इस्तंजा करने से मना फरमाया, यानी राइट हैंड आप तहारत के लिए यूज नहीं करेंगे। ये रिवायत सही मुस्लिम की है और 269 नंबर की रिवायत है। क्यों? लोग कहते क्यों, हमें क्या फर्क पड़ता है, बाएं भी तो अल्लाह ने बनाया, जिसने बनाया उसने बता दिया। आज आप देखिए कोई कहता है फोक लेफ्ट में पकड़ो और नाइफ राइट में पकड़ो, कोई कहता है अपोजिट, तो लोग मैनर समझ के नहीं करते। आप ऐसे खाएं ऐसे पिए, आप चाइनीज लोग हैं वो छोटी छोटी स्टिक्स के साथ पास्ता खाते हैं, तो अब जिनकी जो मर्जी, अल्लाह ने कहा कि दाएं हाथ से रुको। और साफ बात है कि खाने पीने में आप दायां हाथ यूज करेंगे तो अल्लाह ना करे अगर गंदगी का कोई एक अंदर पार्टिकल किसी नाखून में हो और उसी से जर्म्स आ जाए, तो लिहाजा दाएं हाथ से इस्तंजा नहीं करना चाहिए। फिर आपने फरमाया कि जो कोई पत्थर से इस्तंजा कर ले वो ताक अदद ले, ताक से मुराद ऑड नंबर, यानी एक ले, तीन ले, पांच ले, सात ले, क्योंकि ये चीजें फायदा देती हैं। एक हमारे दीन में हमेशा ही ऑड मल्टीपल जो होते हैं वो पसंद किए जाते हैं। ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है 267। तो इन सारी बातों को जितनी अभी तक पढ़ी है इससे क्या पता चला, इवन टॉयलेट में जाने की चीजों को भी अल्लाह के नबी ने सिखाया। मदीना में रहते हुए एक यहूदी ने एक मुसलमान को ताना दिया कि तुम्हारा नबी कैसा है, तुम्हें टॉयलेट में जाने के तरीके सिखाता है। अब हम आज जैसे एम्बेरस्ड मुस्लिम होते तो पता नहीं कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। उसने कहा हाँ हम फख्र से कह सकते हैं, अल्लाह ने हमें ऐसा उस्ताद दिया, ऐसा लीडर दिया, यानी हमारा नबी इतना प्यारा हमारा ख्याल रखने वाला कि वो हमें वॉशरूम में जाने के भी तरीके सिखाता है। तो आप देखिए कि माँ नहीं सिखाएगी तो कौन सिखाएगा। आजकल बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को डे केयर्स में और बारनेहागों में सिखाई जाती हैं ये वहाँ सिखाने की नहीं। मसलन आप देखिए कि पहले दौर में तो बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन को 6-7 साल के बाद देते थे, अब 4-4 साल के बच्चे जो डे केयर्स में उनको अपनी पूरी बॉडी पढ़ा देते हैं। अब बच्चों में मेल भी हैं फीमेल भी हैं, भाई आप इनको क्यों पढ़ा रहे हैं? एक माँ ने मेरे साथ शेयर किया कि बच्चे को ऐसी चीज़ें बता रहे हैं बेबी के मतलब और ये वो, तो उन्होंने कहा कि बच्चे को ये बातें बताने की क्या जरूरत है, नहीं इनको अपनी बॉडी का पता होना चाहिए। अब लड़के को बच्ची की बॉडी का पता चल रहा है, बेटी को बेटे की, जरूरत क्या है? तो ये चीजें लिख लें, ये मैंने मौजू इसलिए छेड़ा है कि ये चीजें माएं सिखाती थी पहले। कभी आपने स्कूलों में टीचर्स को नहीं पैंपर्स बदलते देखा होगा, ये बच्चे की एक अना होती है, एक रिस्पेक्ट है। आज हमारे वेस्टर्न एजुकेशनल स्टाइल में बच्चों की हया खत्म कर दी जाती है। इवन जो स्कूल्स हैं उसमें शावर्स हैं और बगैर किसी ओट के बाथरूम है, यानी तीन चार लड़के, जवान लड़के हैं, बगैर किसी ओट के वो फारिग हो रहे होते हैं। तो ये काम स्कूलों के नहीं है। स्कूल जो होते हैं ना, तालीम और तरबियत कर रहे होते हैं, ये बेसिक एथिक्स हैं, ये माँ सिखाती है। और इससे फिर क्या हुआ कि हया खत्म हो जाती है और फिर बच्चे ऐसी चीजों के लिए यूज्ड हो जाते हैं, फिर बातें ऐसी करना पूछना वो नहीं रहता। फिर एक और अदब लीजिए कि तीन ढेलों से इस्तंजा करना है, यानी कम से कम तीन मट्टी के रोड़े यूज कीजिए। कच्ची मट्टी होती है, उससे मट्टी में एंटी जर्म्स भी होते हैं और मट्टी जो है वो जरासीमों को खत्म भी कर देती है। और ये रिवायत भी सही मुस्लिम की 237 रिवायत है। फिर इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तीन ढेलों से कम के साथ इस्तंजा करना मना है। जब रफ़े हाजत के लिए जाते तो आप दूर चले जाते और आप पानी के साथ इस्तंजा भी फरमाते थे। और इब्ने उमर कहते हैं कि आप नबी सल्लम जब फारिग हो रहे होते थे तो एक आदमी ने आपको सलाम किया मगर आपने उसको जवाब नहीं दिया। यानी अगर कोई ऐसी कैफियत में तो बाहर से अगर कोई सलाम भी कर दे तो उसको जवाब नहीं देना चाहिए। मुराद है कि रफ़े हाजत के दौरान कलाम करना मकरूह है। फिर इसी तरह अबू हुरैरा से रिवायत है कि जब अल्लाह के नबी क़ज़ाए हाजत के लिए जाते तो मैं एक बर्तन में पानी ले आता, आप इसे इस्तंजा कर लेते। मैं फिर एक और बर्तन में पानी ले आता जिससे आप वुजू कर लेते। और इसी तरह आपने फरमाया कि जिस शख्स को रफ़ा हाजत की तलब हो और नमाज खड़ी हो तो पहले वो हाजत से फारिग हो, वरना क्या होगा, नमाज में वुजू भी टूट सकता है और बार बार तवज्जो बटेगी। और फरमाया कि इसके बाद फिर नमाज पढ़े। और इसी तरह से आपने फरमाया कि जब खाना हाजिर हो या पेशाब खाने की हाजत हो तो नमाज नहीं होती। सेम बात है इसमें भी, क्योंकि जब आपको खुद फारिग होने की हाजत है तो नमाज में ना खुशू होगा, ना खुदू और ना इत्मीनान होगा। और अल्लाह के नबी ने इनसे फरागत हासिल करने को मुकद्दम क्यों किया कि पहले अपनी बेसिक चीज़ों से फारिग हो जाओ। अब ये सारी रिवायात जो अभी आपके सामने रखी, ये आसन दर्जे की रिवायात हैं, और इनको अगर आप वाकई रेफरेंसेस के साथ नोट करते हैं, पूरा शरह सदर हो जाएगा कि आपको इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें मिल गई जो कि आपने देखना है। और अगर आप इसको एक फ्लो चार्ट की रोशनी में देख रहे हैं तो आप देखिए कि 10 अदब पढ़े हमने, 10 मैनर्स हमने सिर्फ रफ़े हाजात के पढ़े हैं, जिसको आप और मैं किसी के सामने बात करना भी पसंद ना करें। मैनर्स हैं असल में, हमारा दीन अदब भी सिखाता है और मैनर्स भी सिखाता है। अब एक चीज़ जो बच्चों में आमतौर पे होती थी पहले, लेकिन अब बच्चे बड़े दोनों में ऐसी चीज़ें हैं, और वो क्या है कि यूरिनेट करने के तरीके। क्या हम पेशाब के छींटों से बचते हैं कि नहीं, क्योंकि पहले दौर में लोग दूसरा टॉयलेट यूज़ करते थे, जिसको आज भी लोग इंडियन टॉयलेट कहते हैं या मुस्लिम तरीका। आज जब दूसरे तरह के टॉयलेट्स यूज़ होने लगे, मोस्टली जिसको कमोड स्टाइल कहते हैं, तो ये बहुत सवाल आता है कि पेशाब के छींटों से हम कैसे बचें। तो पहले तो इस हदीस को पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करेंगे। रिवायत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो फरमाया, इन दोनों कब्रों वालों को अजाब हो रहा है और बायस अजाब यानी बचने के लिहाज से तुम्हारे नज़दीक कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं, यानी बड़ा आसान है पेशाब के छींटों से बचना, अगरचे गुनाह के लिहाज से बहुत बड़ी है। इन दोनों में से एक पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोर था, बैक बाइटिंग करता था। अच्छा, ये कैसे पता चला? तो पीछे भी बात हुई थी, गैब की ये खबरें अल्लाह की तरफ से आपको बजरिया वही मिली थी। और इससे ये लाजिम नहीं आता कि आपको हर इंसान के दुनिया के और बरजख के हाल पता है। तभी तो जब मुशरिकीन के फौतशुदा बच्चों के अंजाम के बारे में आपसे पूछा गया था तो आपने कहा था कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो बड़े होते तो क्या हो जाते। तो पता क्या चला कि पेशाब के छींटों से परहेज करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते, अपने कपड़ों को नहीं बचाते, या कह लीजिए पानी इस्तेमाल नहीं करते, या टिश्यू अगर यूज़ भी करते हैं तो सही नहीं करते, कम यूज़ करते हैं, जिस्म पे कुछ आलाइशें रह जाती हैं, तो आप देखिए कि बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। और रिवायत ये बुखारी की है 216, तो इससे पता चलना है कि ये अजाब का भी बायस है। और आज के दौर में अब जैसे कि बहुत सारे लोग सहूलत पसंद हो गए, एक तो ड्रेस कोड बदल गए हमारे, अब आप खुद सोचिए कि एक पूरा टाइट वेस्टर्नाइज पैंट शर्ट और थ्री पीस सूट, यानी कई आलाइशों में इंसान अपने आप को मुब्तला पा लेता है सिर्फ अपने ड्रेस कोड की वजह से। ढीले ढाले रिलैक्स्ड कपड़े, नॉर्मल कपड़े हों तो इंसान बहुत आराम से बच सकता है। ज़रूरत है इस बात की कि हम इन सारी चीज़ों को इस तरीके से समझें कि इस्लामिक कल्चर गालिब हो। अपने बच्चों को गाइड किया करें, टॉयलेट में बैठने का खास तरीका होता है, क्योंकि देखिए कि ये भी चीज़ें हमने खुद देखनी है ना। वैसे आप देखिए कि मोस्टली अब 98% हमारे इर्द गिर्द कमोड सिस्टम है। आप देखते हैं कि उसकी एक खास शेप होती है, एक नीचे बिल्कुल वो जगह जहाँ पानी गिरता है या वहां से आता है, और एक बिल्कुल ऊपर है। आप अपने बैठने के स्टाइल से उसको सही रखिए। कई दफा आप इतनी आगे बैठ जाएंगे कि उसके जब जो ही आप फारिग होंगे तो आपकी अपनी ही छींटे वापस आपके जिस्म पे पड़ेंगी। अब आपके जिस्म पे जब वापस पड़ेगी ना तो आपको नहीं पता कहाँ गई कहाँ नहीं गई। आप एक खास हद तक साफ करेंगे लेकिन बाकी जगह नहीं साफ होगी। पीछे बैठिए कि आप फारिग हों तो आपकी अपनी निजासत मैक्सिमम आपसे दूर हो। इसी तरह बच्चों को भी सिखाना चाहिए। फिर वही बात दूसरी है कि जब बाहर की दुनिया में लोग होते हैं, यानी घरों में तो हर चीज़ है, मुस्लिम शावर है, पानी है, तो बाहर जब पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करें तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि माएँ अपने बच्चों को भी बताएं और बेहतरीन तरीके से उनको गाइड करें। और वेट टिश्यूज़ आज के दौर में एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है। प्लास्टिक के छोटे छोटे बैग्स रख के बाहर सिंक से पानी ले सकते हैं, इवन मजबूरी में टॉयलेट पेपर से भी फारिग हो सकते हैं। शर्त एक है कि जिस्म पे आलाइश और बदबू बिल्कुल खत्म हो जाए। कुछ बच्चे रात को बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं और अगर माँ को ना पता चले तो उनकी गंदगी जिस्म पे बिस्तर पे ही रहे। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। शऊर के साथ ही बच्चे को आदी करें। जब हम बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं, और वो माएँ जब अपने बच्चों की तहारत से केयरलेस होती हैं, कभी भी वो बच्चे स्पिरिचुअल मोड में आएंगे भी नहीं। पर अक्सर देखिए फितरत के तकाजे के तहत बच्चा जब तलब महसूस करता है ना तो माँ को किसी ना किसी तरह से फील जरूर कराता है। एक छोटी सी बात जो अच्छी तो नहीं लगती माँ को, लेकिन मैं फिर भी जरूर कहती हूँ, हर वक्त बच्चों के हाथ में जूस और चिप्स और बिस्किट ना रखें। वो जानवरों की तरह चलते फिरते खाते हैं और वो जानवरों की तरह फारिग भी हो जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला से बहुत दुआ कीजिए हमारे लाइफ स्टाइल में इस्लाम का रंग आ जाए, हम बेहतरीन तरीके से लेके चलें। अगला टॉपिक है निजास्तों की तत्हीर का बयान। एक तो थी निजास्त, गंदगी, कोई भी गंदगी जिस्म पे या कपड़े पे लग गई। अब ये है कि आप इसको पाक कैसे करें, अगर उसने कहीं ऐसी गंदगी कर दी तो उस जगह को कैसे धोएं। तो एक अराबी ने मस्जिद में आकर पेशाब किया और लोग इसके पीछे पड़ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया, दउहू व हरीकू अला बौलिही सजलम मिम्माइन, इसे छोड़ दो और जगह को पाक करने के लिए इसके पेशाब पर पानी का डोल बहा दो। जी आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लम का कितना प्यारा ज़र्फ़ था। एक अरबी जो बद्दू है, कम अकल है, आपने उसके गंदगी वाले जगह पे खुद पानी डाला, बल्कि बाद में आता है ये बुखारी की रिवायत 220 है और मुस्लिम में भी 284-285 में ये हदीस आपको मिल जाती है। आप अगर आप देखिए उसके पीछे आप भागते, लोग भागते या उसको डरा देते, ये पूरी तवील हदीस है। लेकिन मैंने पहले ही अर्ज किया था कि यहाँ तहारत का मौजू बिल्कुल टू दी पॉइंट है। किताबो तहारा में ये सारी तवील से रिवायात और इनकी डिटेल भी मौजूद है। तो क्या पता चला, अब जैसे बच्चे ने अगर पेशाब किया उस बिस्तर को धोइए, अगर वो पूरा बिस्तर निकल नहीं सकता, उसका मैट्रेस है, तो उसको जितना स्क्वीज करके उसके ऊपर 2-3 दफा आप कोई ऐसा स्पंज यूज कीजिए पानी पे सोप लगाकर कि वो खुश्क हो। और ऐसा मतलब कभी एक्सीडेंटली तो हो सकता है लेकिन आदत नहीं बनेगी। ऐसे बच्चे के कपड़े पे बिस्तर पे आप प्लास्टिक पेपर डाल दीजिए ताकि ऊपर की शीट आप धो लें लेकिन वो गद्दे के अंदर गंदगी उसकी ना गई हो। और आपने जब उस बंदे को कहा तो जब ऐसा हुआ कि पानी बहा दो, और आपने फरमाया मस्जिद में पेशाब और गंदगी के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र, नमाज और कुरान पढ़ने के लिए होती है। तो इससे एक बहुत ही खूबसूरत साइड का इशू भी मिला कि मस्जिदों को साफ रखना चाहिए। देखिए साफ जगह पे इबादत का मजा आता है। मस्जिद साफ नहीं होगी तो बताइए बाकी चीजें कैसे साफ होंगी। और दूसरी बात है कि बाहर सफाई नहीं होगी तो दिल भी गंदे होंगे। और ये जो रिवायत है ये सही मुस्लिम की 285 और इब्ने माजा 529 थी। तो मस्जिदों को और अपने घरों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि इबादत का खुशू पैदा हो। अब एक और सवाल जो खास तौर पे खवातीन के लिए, अब आप चूंकि खवातीन हैं और हम लोग ये मौजू क्लास में पढ़ रहे हैं इसलिए हमें इसको पब्लिकली भी डिस्कस करना पड़ता है, और दीन में शरा में शर्म नहीं है। कभी किसी को कोई इशू ना पता हो और वो उसकी वजह से गलत काम करता रहे और दूसरी तरफ सिर्फ शर्म की वजह से बात ना की जाए, तो ये भी दीन को छुपाना है। तो अगला मसला जो इसमें हम पढ़ेंगे वो क्या है, हैस आलूद कपड़ों का हुक्म। यानी औरत के बीमारी के दिनों में अगर किसी कपड़े पे कोई ऐसी गंदगी लग जाती है तो उसके बारे में क्या हुक्म है। पहले तो आप अपने कल्चर में देखिए क्या कुछ है। अमूमन बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे ख्याल हैं, ऐसे कपड़े नापाक हैं, नमाज नहीं पढ़ते और इसमें वुजू नहीं करना या इसमें पसीना आ गया था, तो ऐसा नहीं है। पहले पढ़ लेते हैं फिर इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। अस्मा बिनते अबू बकर रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जिस औरत के कपड़े को हैज का खून लग जाए तो वो क्या करे। आपने फरमाया इसे खुरच ले, फिर चुटकियों से मलकर पानी से धो ले, फिर इसमें नमाज अदा करे। याद रखिए ये वो माशरा था जहां एक दो से ज्यादा कपड़े होते ही नहीं थे। हमारी तो वार्डरोबे ही ना भरी हुई खत्म हो और कहां वो बात थी। पहली बात देखिए कि एक औरत ने अल्लाह के नबी से इतना पर्सनल मसला पूछा, तो जिस तरह डॉक्टर से बात करनी ही पड़ती है तो अल्लाह के नबी से अगर ये बात ना पूछी जाती तो किससे पूछी जाती। तो यहां से पता चलता है कि शरा के तकाजों के मुताबिक अगर दीन की कोई बात औरत मर्द से या अगर और कोई मतलब जरूरत पड़ती है, जैसे अल्लाह के नबी एक मर्द थे औरत औरत थी, तो पूछी जा सकती है। लेकिन वही बात है कि इसमें अंदाज बहुत मुबहम और बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। और ये रिवायत भी सही मुस्लिम की भी रिवायत है 285, और डिफरेंट रेफरेंसेस आप खुद देख सकते हैं। दूसरी बात ये जो आपने कह दिया कि उसको खुरच दे क्योंकि पानी ही नहीं होता था, तो क्या पता चला कि ऊपर गंदगी को अगर निकालने के लिए पानी भी ना मिले तो सिर्फ उसको खुरचा जाए, और पानी मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा, अब गीला है तो फिर भी पानी में उसमें अदा कर सकती है। मुराद ये कि अपने आप को पाक रखना चाहिए। हमारे कल्चर में ये जो बातें हैं कि इन कपड़ों में जो कभी इन दिनों में पहने हो अब दोबारा कभी नमाज नहीं पढ़ सकते, तो ऐसी कोई बात नहीं। औरत ने अगर सर की ओढ़नी इन दिनों में ओढ़ी हो, बाद में वो तहारत करने के बाद भी उस चादर में नमाज पढ़ने लगे तो अमूमन लोग वहम करते हैं, बाज बिस्तर बदलते और ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। ये तो अब हमारा बड़ा हाइजीनिक कल्चर है ना जीने का, हम तो जितने मर्जी बेडशीट्स बदलें और कितना सोप साबुन रखें, हमारे पास तो नेमते बड़ी है ना। आज भी मैं खुद जाकर देख चुकी हूँ पानी है ही नहीं है, स्थल के इलाके हैं, वहां बेचारों को पीने को ना मिले और कहाँ इतने इतने वो कपड़े धो सकें। तो इसलिए हमेशा इन चीजों को वर्ल्ड वाइड सिनेरियो में देखिए। थर भी है और अगर कहीं जंगलों में रहने वाले लोग भी हैं, सहराई इलाकों के लोग भी हैं, और इसी तरह हमारे सोफिस्टिकेटेड माहौल के लोग भी हैं, तो हमेशा जितना बेहतर तरीके से कर सके। और ये रिवायत बुखारी की 227 रिवायत थी, तो लिहाजा इस पे भी अपने आप को देख लीजिए। यानी बाहर चीज पे निशान ना हो, अगर है तो उसको खुरच दीजिए। और ऑफ कोर्स आज आपके मेरे पास हर चीज के लिए कपड़े धोने का अगर एहतमाम है, तो अगर किसी कपड़े पे ऐसी कोई चीज होगी तो उसको तो ऑफ कोर्स आप धो सकते हैं। लेकिन बाज दफा लोग नमाज छोड़ देते हैं इसलिए कि मैंने वो कपड़े पहने हैं जिसमें मैं नमाज नहीं पढ़नी, तो ऐसी बात नहीं है। हुक्म तो बहरहाल सिंपल है, अब हम उसको कैसे लेते हैं। फिर नजास्तों में से एक और चीज होती है मनी, मनी का धोना। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी धो डालती और आप इस कपड़े में नमाज पढ़ने तशरीफ ले जाते थे जबकि धोने का निशान कपड़े पर होता था। यानी मर्द की सेक्रीशन, जो भी अल्लाह ताला ने इंसान के साथ पर्सनल चीजें लगाई हुई हैं, तो अगर किसी मर्द के जिस्म पर कोई ऐसा पानी जो एक ख्वाहिश के साथ आया तो उसको धोया जा सकता है। और मनी और मसी आगे आ रहा है तो दोनों का फर्क वहां बताती हूँ। लेकिन बहरहाल इससे क्या पता चलता है कि कपड़ा धो लिया है लेकिन निशान पानी का है तो नमाज पढ़ सकते हैं। यहां से आप देखिए कि अल्लाह के नबी के पास एक्स्ट्रा कपड़े ही नहीं होते थे। आज लॉकडाउन ने तो हो सकता है कई लोगों को भी ऐसी बातें सुझा दी होंगी, लेकिन अमूमन तो हमारे पास ढेरों ढेर कपड़े होते हैं। फिर तीसरी चीज है शीर ख्वार बच्चे का पेशाब। दूध पीता बच्चा अगर किसी पर यूरिनेट कर दे तो उस कपड़े या उसका क्या हाल होगा। तो मैं कैस अपने छोटे शीरख्वार बच्चों को जो भी खाना नहीं खाता था, यानी अमूमन 4 माह तक बच्चा सिर्फ दूध ही पीता है, तो ऐसे बच्चे के बारे में क्या हुक्म है। रसूलुल्लाह के पास लाई, आपने इसे अपनी गोद में बिठा लिया, बच्चे ने आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया तो आपने पानी मंगवा कर कपड़े पर छींटे मारे और इसे धोया नहीं। अल्लाह होकर, क्या हौसला था, क्या ज़र्फ़ था। और आप देखिए कि बुखारी की ये रिवायत है 223 और मुस्लिम में 287। पहले आप सोचिए, इतने बड़े लीडर के बारे में ये तसव्वुर आता है, किसी का बच्चा आपके ऊपर पेशाब कर दे। कभी आप सोचें, आज अमूमन हम तो पता नहीं उसको बेइज्जती और पता नहीं क्या कुछ नाफरमानी ना कह दें, बच्चे तो बच्चे होते हैं, ठीक है। तो क्या पता चला कि दूध पीता बच्चा भी, जिसको सिर्फ दूध मिला है, उसका पेशाब पाक होता है। और आज साइंस ने इस चीज को प्रूव किया, लड़के का पेशाब और लड़की का पेशाब कैसे फर्क होता है, एक गाढ़ा होता है एक पतला। लेकिन लड़का जो अभी कुछ नहीं खाता, अभी सिर्फ दूध पे है माँ के, उसके पेशाब पर सिर्फ छींटे मार दीजिए तो वो जगह पाक है। अब अगली रिवायत देख लीजिए। लुबाबा बिनत हारिस रजी अल्लाह अनहा रिवायत करती हैं कि हुसैन बिन अली रजी अल्लाह अनहुमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब कर दिया जो भी शीर खुआरी थे। इससे पता चलता ना कि आप लोगों के बच्चे पकड़ते थे, आज तो बड़ी बात हो जाएगी, बच्चा पकड़ लिया, ये क्या हो गया। तो बच्चा तो पाक होता है और बच्चे तो मासूम होते हैं। खैर, ये कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कोई और कपड़ा पहन लें और ये तहबंद मुझे दे दें ताकि मैं इसे धो दूं। तो आपने फरमाया, लड़की का पेशाब धोया जाता है और लड़के के पेशाब पर छींटे मारे जाते हैं। अब आप देखिए कि ये जो रिवायत है, ये अबू दाऊद की रिवायत 375 है और भी रेफरेंसेस मौजूद है। अब ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ गई, हाय हाय लड़की का ऐसा। देखिए, फिजिक का भी फर्क होता है, लड़के का पेशाब और तरह फैलेगा, इतनी जगह कहाँ धोएं कहाँ ना धोएं, लड़की का पेशाब अमूमन एक ही जगह पे गिरेगा। और दूसरी बात है, बॉडी का फर्क बाद में भी तो आता है ना, औरत के प्यूबर्टी के साथ और मर्द के, दोनों में फर्क है ना। तो बच्ची का पेशाब गाढ़ा होता है और उसमें कुछ ऐसा केमिकल एनालिसिस हो सकता है कि जिसको धोना ही पड़ता है, लेकिन लड़के के पेशाब पर सिर्फ छींटे मारने काफी है। और अल्लाह के नबी का अमल और आपका ये हमें कहना, हमारे लिए इतना ही काफी है। फिर इसके बाद एक और नजस चीजों में, क्या कोई नजासत जूते पे लग गई, आप बाहर गए, गंदगी थी किसी जानवर की, किसी कुछ की, तो उसके लिए क्या हुक्म है। अबू सईद रजी अल्लाह अनहु से रिवायत है, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद आए तो वो देख ले कि अगर जूतों में गंदगी लगी हो तो जमीन पर रगड़ने के बाद इनमें नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह। आज भी देखिए, जब बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कुत्ते फिरते हैं, या हो सकता है किसी की गंदगी भी हो, तो आप इन सारी चीजों को जहन में रखिएगा। ये अबू दाऊद की रिवायत थी 650। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा वहम नहीं है हमारे दीन में, यानी बाज लोग नेकी के नाम पे बहुत वहमी भी हो जाते हैं। फिर आप देखिए, कुत्ते का झूठा, आपने बाहर कुछ बर्तन रखा, आप कुत्ता उसमें मुंह मार गया, या आपके कपड़े के साथ कुत्ते का मुंह लग गया, उसमें क्या हुक्म है। तो अब्दुल्ला बिन मख्फल रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कुत्ता किसी के बर्तन में मुंह डाल जाए या बाज रिवायत के मुताबिक पानी पी जाए, तो बर्तन को 7 बार पानी से धो ले और पहली बार मांझे, यानी पहली दफा मट्टी लगाएं। जैसे पहले दौर में बर्तन धोए भी मट्टी से जाते थे, राख थी और कुछ इस तरह की चीजें, और आज सबने माशाल्लाह ये भी जान लिया कि मट्टी में एंटीबायोटिक चीजें होती हैं। तो पहली दफा में मट्टी और उसके बाद 7 दफा उसमें पानी बहाया जाएगा। अब जो लोग कुत्तों को पसंद करते हैं वो कहते हैं, भाई ऐसा क्यों है, इससे क्या होता है, और ये तो बातें हमें अच्छी नहीं लगती, और ऐसा क्यों कहते और वैसा क्यों करते। तो आप देखिए कि अल्लाह ने शरीयत बनाई, अल्लाह ताला जो भी कहेगा उसके पीछे कोई हिकमत होगी, और क्या मैं आप अपनी बहस करेंगे। डॉक्टर आपको कोई बात कह देते हैं तो आप उस पर बहस करते हैं, और इसी तरह से आप बाकी भी चीजों को देखें, तो हिकमत मालूम हो ना हो, बस अल्लाह के नबी का अमल या आपका कोई कहना, कोई हुक्म देना हमें, हमारे लिए वो काफी है। फिर उसके बाद देखिए, मुर्दार का चमड़ा, मुर्दार से मुराद मसलन जो जानवर खुद मर गया, ज़िबा नहीं किया उसको इस्लामी कली, या आपके गाय भैंस बकरी है लेकिन खुद से मर गई, तो उसकी खाल के बारे में क्या हुक्म है। जैसे लोग लेदर यूज करते हैं, उसके साथ जैकेट्स और दूसरी चीजें बनती हैं, तो इसके लिए भी मसाइल सुन लें। पे की खाल की जो चीजें बनती हैं, पर्स हैं, जूते, और कितने महंगे, कई कई $100 के ये जूते हैं, तो इन सब के बारे में हुक्म सुन लेते हैं। मैमूना रजी अल्लाह अन्हा की बकरी मर गई जो इनकी लॉन्डी को किसी ने सदके में दी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास से गुजरे और पूछा कि तुमने इसका चमड़ा उतार कर रंग क्यों ना लिया ताकि इससे लोग फायदा उठाते। लोगों ने कहा, वो तो मुर्दार है। आपने फरमाया, सिर्फ इसका खाना हराम है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा ने फरमाया, हमारी बकरी मर गई, हमने इसका चमड़ा रंग कर मश्क बना ली, फिर हम इसमें नबीस यानी खजूर का मशरूब बनाते रहे यहाँ तक कि वो पुरानी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खाल इस्तेमाल करने से मना फरमाया। दरिंदा क्या होता है? जो बीस होते हैं, जो झपट कर खाते हैं, जैसे उकाब और ऐसी चीज़ें। अब आप इन सारी चीज़ों को अगर जितनी भी अभी पढ़ी हैं इसको सामने रख लें तो खुलासा आपको बात का समझ आ जाएगा। और वो क्या है कि पहली बात है कि गाय, भैंस, बकरी जिसका गोश्त हलाल है लेकिन अभी उसको ज़िबा नहीं किया और वो मर गई, तो उसकी खाल हलाल है। क्योंकि हिकमत है ना कि गोश्त खाने में तो इसलिए मना है कि उसका गर्दन से काट कर खून नहीं निकाला गया, तो स्किन है, लेकिन खिंजीर यानी पिक जिसको आप कहते हैं उसकी खाल नहीं इस्तेमाल होगी, सांप की खाल ऐसे इस्तेमाल नहीं होगी। अगर किसी ऐसे दरिंदे या किसी एक की जानवर की किसी चीज को भी लेना हो, पूरा उसको साफ करके उसके ऊपर रंग जाता है, यानी बिल्कुल उसकी डायरेक्ट सतह के बीच में कुछ ना कुछ आ जाता है, तो मुर्दार के चमड़े से, हलाल जानवर के चमड़े से फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन जो दरिंदे हैं उनसे फायदा नहीं उठाया जा सकता। और आप देखिए, पहली रिवायत बुखारी की थी 6686, दूसरी अबू दाऊद की थी 4132, और तीसरी रिवायत भी बुखारी की 221 थी। तो दूसरी ये बात है कि जहां शक का है उसको छोड़ दें। मुझे तो इतनी बात समझ आती है, लोग पूछते हैं इतना महंगा बैग $600 का क्यों, कहते हैं असल में एक सांप की खाल का है और शेप पूरी बनी होती है ऊपर उसकी चमड़ी का। आपका पकड़ने को दिल करता है? कोई सांप पकड़ सकता है? दिल करते हैं ऐसी पिक के बने हुए जूते? आप जब भी कभी लें तो आप खुद भी देखा करें कि ये महंगी चीजें यकीनन वो किसी दरिंदे की होगी, क्योंकि वो नायाब है, कम मिलती हैं चीजें, तो सस्ती चीजें लेनी शुरू कर दें तो महंगी चीजों का ये मसला भी खत्म हो जाएगा। फिर सिर्फ बिल्ली मुंह डाल गई किसी चीज में, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बिल्ली का जूठा नजस नहीं है और बिल्ली का जूठा पाक है। अब ये भी नहीं कि आपकी और बिल्ली की एक ही प्लेट हो, आधा वो खा रही है आधा आप खा रहे हैं। वो जैसे लोग एक आइसक्रीम की बाइट कुत्ते को मुंह में डालते हैं और एक अपने लॉलीपॉप वो भी चूसता है, तो ये भी, तो ये तो फिर हमारे दिमाग में ही नहीं बात ठहरती, आगे कहाँ होगी। और ये अबू दाऊद की रिवायत 75 थी। तो कुत्ता नापाक है, उसका 7 दफा धोया जाएगा, लेकिन बिल्ली नजस नहीं है। एक और चीज जिसको नजस कहेंगे वो है सोने चांदी के बर्तनों में खाना। इसके बारे में क्या हुक्म है? उम्मे सलमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स सोने चांदी के बर्तनों में खाता पीता है वो अपने पेट में दोजख की आग दाखिल करता है। और याद रखिए, ये दुनिया में कुफार के लिए और आखिरत में मोमिनों के लिए है। और ये बुखारी की रिवायत है 5634। कराहत होनी चाहिए, नहीं खा सकते। पहले दौर में बाकी चांदी के प्याले होते थे, अब सोने का प्याला क्या, सोने की एक कील ना इतनी महंगी, और सोने के बर्तन अगर कोई ले भी ले तो वो तो लॉकर में ही रखेगा, कहाँ इस्तेमाल कोई करेगा। लेकिन बहरहाल गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड चीज़ों से इंसान के दिल में मकरूहियत जरूर होनी चाहिए, गो के वो गोल्ड नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ इस निस्बत से बचने के लिए गोल्डन चम्मच में नहीं खाते, सिल्वर प्लेट में नहीं खाएंगे। क्यों? कि मैं क्यों खाऊं, क्यों मैं लोगों को बताऊं कि मेरे दिल में इन बर्तनों में खाने की नफरत नहीं है। आगे फिर कुछ खवातीन से मुतल्लिक इश्यूज हैं जो वाकई सिर्फ खवातीन ही को फायदा देंगे, क्योंकि बीमारी के वो दिन जिससे किसी हवा की बेटी को मफर नहीं है, तो उनके लिए इन बातों को जानना लाजमी है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि इस्लाम बड़ा पाक मजहब है, हर चीज का तरीका, हलाल का, हराम का। बल्कि एक बच्ची जिसका मैंने एक मैसेज किसी मस्जिद में पढ़ा था, अमेरिका में थी, तो खवातीन की साइड्स पे भी व्हाइट बोर्ड्स होते हैं, मर्दों में भी होते हैं। तो वहाँ एक लड़की की तरफ से एक इंग्लिश में लेटर लिखा हुआ था और उसने कहा था कि इसको जितना भी आप दूसरों तक पहुँचाएं। तो उसका एंड अप खुलासा क्या था कि वही जो जवानी के नशे होते हैं, उसने एक गैर मुस्लिम लड़का जो साथ पढ़ता था, अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर उससे शादी की, माँ बाप राजी नहीं थे, उनको छोड़ के चली गई। कहती है कि मैंने उससे कोर्ट मैरिज की, लेकिन जब मैं उस लड़के के साथ उसके घर में एक वाइफ होने के नाते रही तो मुझे पता चला कि वो कितना गंदा और गलीज इंसान है। क्योंकि जाहिर है कि एक साथ रहते और खास भी हस्बैंड वाइफ, कभी भी एक दूसरे की चीजों से मफर नहीं हो सकता। उस वक्त कहती है कि जब वो शराब पीता और बाद में बिस्तर पे उल्टियां करता, मैं उसकी वो वॉमिट वाली चादरें धोती और उसमें कोई तहारत का सिलसिला नहीं है, और वो इंतहाई गंदा इंसान था। तो उसका जो पैगाम था उसमें यंग बच्चियों को, कि अगर आप में से भी कोई बच्ची सिर्फ अपने साथ पढ़ते हुए किसी गोरे चिट्टे बंदे से मुतासिर है तो मेरे वाली गलती ना कीजिएगा, कि वो बजाहर खूबसूरती और सफाई, लेकिन इन लोगों में तहारत का निजाम नहीं। और सच है, क्योंकि इस्लाम तो आपको तहारत सिखाता है ना। ठीक है, तो हम अगला टॉपिक शुरू कर लेते हैं। ये भी अहम है क्योंकि नमाज की शरायत में से तहारत है। अब अगर हम ये बातें ना करें कि जी ये बातें हम कैसे सीखें, क्या करें, तो कौन सिखाएगा, कैसे सीखेंगे? और आप अपने घरों से अगर कर रहे हैं और इस वक्त नेट के थ्रू भी हम इसको ओपन पब्लिकली भी करें, तो मेरा ख्याल है कि इसको सिर्फ वही सुने जिससे ये मुतल्लिक है, और जाहिर है कि जिनके मसले हैं और वो खवातीन के हैं, तो ये चीज़ें सारी उन्हीं को फ़ायदा देती हैं। और दीन सीखने में तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें किसी को नहीं रोका। तो आइए देखिए कि नजस चीज़ों में से एक चीज़ क्या है, हैस और जुनाबत की कैफियत। हम सब जानते हैं कि हर बंदे के साथ, मर्द औरत के साथ, क्या बच्चे बड़े के साथ कुछ गंदगियां लगी हुई हैं। तो इसमें से प्यूबर्टी के साथ जो चीज़ें आती हैं उनमें से एक चीज़ हैस है, जो लड़कियों में, जिसको बात लोग माहवारी कहते थे, मंथली या मेंस्ट्रुएशन, यानी हर मंथ आने वाली चीज़, इस्लाम उसको हैस कहता है। हैस हाजा या हीजु हैजन बहने के मानी, यानी टू फ्लो का मानी है। और जुनाबत वो कैफियत जिसमें गुस्ल वाजिब है। जुनाबत इसको क्यों कहते हैं? अलग होना जनब से, यानी इसमें बंदा नमाज और कुरान से अलग होता है। ये शादीशुदा लोगों का इशू है, यानी कोई ऐसा रिलेशन कायम हो जाए कि जिसके बाद गुस्ल वाजिब हो। इनके बारे में इस्लाम क्या कहता है, पहले सारे मसाइल पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम इनको कुछ चीज़ों में देखेंगे। जुनाबत और हैज से मुतल्लिक अहकाम और मसाइल। मंदरजा जैल हालतों में गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है। नंबर एक, जोश और शहवत के साथ मनी खारिज होने के बाद, और इसमें इहतलाम भी शामिल है। यानी इख्तलाम जैसे औरतों में, लड़कियों में हैज अलामत है, तो इस तरह वेट ड्रीम्स भी कह सकते हैं। यानी एक मर्द जब बालिग होता है तो उसको नींद की हालत में जो रतूबत निकलती है उसके बाद भी गुस्ल वाजिब होता है। और ये बात बहुत सारे यंग लड़कों को नहीं पता होती। माएँ शर्माती रहती हैं और बाप की दोस्तियां नहीं होती। और मैं जब बास खवातीन ने कहा कि हमें अपने बेटों को खुद बताना पड़ती हैं ये बातें, क्योंकि बाप नहीं बात करते, तो लड़कियों से माओं को बात करनी चाहिए और लड़कों से बापों को बात करनी चाहिए, ठीक है? तो दूसरी चीज, जिमा के बाद ख्वा इंजाल हो या ना, यानी हस्बैंड वाइफ का खास ताल्लुक, यानी ताल्लुक खास कह लीजिए, इसके बाद भी गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे कोई सिक्रीशन उसके बाद निकले या ना निकले। फिर तीसरी हालत है हैज के बाद, यानी औरत जब अपनी बीमारी के दिनों से निकलेगी तो वो फिर गुस्ल करेगी, फिर नमाज अदा करेगी। और इसी तरह नफास के बाद, और नफास सभी को पता है 40 डेज मैक्सिमम है, यानी वो खून जो बच्चे की पैदाइश पर जारी होता है, वो चाहे 4 दिन में भी खत्म हो जाए तो उतना ही होगा, लेकिन उसकी मैक्सिमम हद 40 दिन है। इसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं हमारे कल्चर में, अल्लाह ताला एहसास दिला दे, क्योंकि बस 40 दिन ही नमाज नहीं पढ़ती खवातीन, ऐसा नहीं है। अगर कुछ दिन के बाद वो औरत पाक होती है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आम पीरियड से पाक होकर वो नमाज वगैरह भी कर सकते हैं, और जहां नमाज है वहां सब अलाउड है। फिर बाज दफा एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है मर्दों के लिए, और नाजायज जायज के हदों में ही पड़े रहते हैं। अगर खून साफ हो गया, औरत नहा धोकर बिल्कुल अपने शौहर के लिए भी पाक हो जाती है और नमाज के लिए भी। सोहबत और गुस्ले जनाबत। एक मरतबा सहाबा कराम के दरमियान गुस्ले जनाबत का मसला जेरे बहस आया। एक गिरोह कहता था कि गुस्ल सिर्फ दखूल पर फर्ज हो जाता है, इंजाल शर्त नहीं है। दूसरा गिरोह बयान करता कि गुस्ल के लिए, दखूल के लिए इंजाल भी शर्त है। यह तवील मुबासा किसी फैसला को नतीजे पर ना पहुंच सका। आखिरकार अबू मूसा अलअशरी ने इस मसले के हल की जिम्मेदारी ली। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा से इस बारे में दरियाफ्त किया। नोट कीजिए, सहाबा और आयशा से पूछें, क्योंकि वही सोर्स थी उस वक्त। अल्लाह के नबी जा चुके थे, अल्लाह के नबी की अजवाज एक बहुत बड़ा जरिया रही हैं। एक ऐसा दौर गुजरा है कि अल्लाह के नबी की पर्सनल जिंदगी की बातें दीन की जो पहुंची हैं, और उसमें एक बड़ा हिस्सा हजरत आयशा से, और एक काफी बड़ा कह लीजिए कि उसकी निस्बत तो थोड़ा, लेकिन वो उम्मे सलमा से पहुंचा। तो ये भी एक महातुल मोमिनीन का एक बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो बहरहाल हजरत आयशा से जब उन्होंने पूछा तो आपने क्या कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजा जलस बैना शुआइबी हल अरबई व मसल खितान उल खिताना फकद वजबल गुस्लो। जब मर्द औरत की चार शाहों के दरमियान बैठ जाए और इसका महले खतना औरत के महले खतना के साथ मस करे तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। मुराद ये है कि जरूरी नहीं कि इंजाल हो, बल्कि अगर जस्ट लाइक विदाउट एनी बैरियर दोनों मिल जाते हैं जिस्म, तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो मसला ये हुआ कि सिर्फ दखूल पर मर्द और औरत जुम्बी हो जाते हैं और इन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, कोई सेक्रीशन रिलीज हो या ना हो, ये लाजमी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द औरत की चार शाखों के दरमियान बैठ कर सोहबत करे तो गुसल वाजिब हो गया अगरचे मनी ना निकले। ये रिवायत है दो। मनी असल में वो मादा है जिससे बच्चे की तखलीक होती है। मजी वो है जो उससे पहले के जो लिक्विड सिक्रीशन, कोई ऐसी वेटनेस, कोई ऐसी ट्रांसपेरेंसी हो। और ये रिवायत आप खुद भी पढ़ सकते हैं बाद में अगर चाहें तो, सही बुखारी का ये टॉपिक और सही मुस्लिम में से आप डिटेल से पढ़ेंगे तो बल्कि आपको इसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। अगली चीज़ जो हमारे कल्चर में बहुत ही अननोन है, स्पेशली आज का दौर, फितनों का दौर, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी भी है, लेस्बियनिज्म भी है और गेइज्म तो आम हो गया, वो क्या है कि मर्द की तरह क्या जवान होने के बाद एक औरत को भी इख्तलाम होता है। मुराद ये कि क्या औरत भी नींद की हालत में कोई ऐसी चीज देखती है कि जिसके बाद सुबह उठ के उसको गुसल करना हो। इसके ऊपर यह हदीस है, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, उम्मे सुलैम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, यकीनन अल्लाह हक से नहीं शर्माता। मैं भी आपसे मसला पूछना चाहती हूँ, क्या औरत पर गुसल वाजिब है जब इसे इख्तलाम हो जाए? आपने फरमाया, हाँ, जब वो पानी यानी मनी का निशान देखे। इस पर उम्मे सलमा रदिल्लाहु अन्हा ने शर्म से मुंह छुपा लिया और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, की औरत को भी इख्तलाम होता है? आपने फरमाया, हाँ होता है, तेरा दायां हाथ खाक आलूद हो, अगर ऐसा नहीं तो बताओ कि फिर बच्चे की मांग के साथ मुशाबहत कैसे हो जाती है? यानी अगर औरत की तरफ से कोई भी ऐसा इनपुट नहीं जाता तो फिर बच्चा कभी कभी माँ से रिजेंबल क्यों होता है? अब उस वक्त तो ये लोगों ने मेडिकल नहीं पढ़ी हुई थी, आज तो एक एक चीज मेडिकल की दुनिया में खुलकर आ गई। और ये बुखारी की रिवायत 282 है। क्या पता चला कि औरत या मर्द नींद से उठकर अगर तरी यानी वेटनेस देखे, निशाने मनी देखे, तो यह इख्तलाम की अलामत है, लिहाजा इस पर गुसल करना वाजिब हो जाता है अगर इख्तलाम की कैफियत इन्हें याद हो, लेकिन निशान ना पाए तो गुसल फर्ज नहीं होगा। ऐसी सूरत में शक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या पता चला कि मर्द की तरह औरत को भी अगर रात को नींद में या ख्वाब में या किसी भी ऐसी फीलिंग के साथ कोई वेटनेस फील हो, बॉडी से कोई ऐसी चीज़ निकलती है, तो वो भी पहले गुसल करेगी और उसके बाद फिर वो नमाज अदा करेगी। अब देखिए कि ये जवान होते हुए बच्चों को बताने वाली बातें हैं अच्छे तरीके से। और अगर आप दीन सिखा रहे हैं, हदीस के बाप में खुद ब खुद ही आ जाएगा। कुरान में आप दूसरा पारा खोलते हैं, आप देखिए कि आखिरी 1/4 अभी शुरू भी नहीं हुआ, यस सलून का नील महीदी कुलवा अजा फात अजिल निसा फिल महीद, तो ये सारे मसाइल कुरान का हिस्सा है, हदीस का हिस्सा है। इसलिए इसके बारे में हमें एक लफ्ज भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जिससे इस तकद्दस वाली महफिल और ऐसी चीज का कुछ भी कोई गलत सोचे। और मर्दों को मस्जिदों में जाकर जो भी वहां दीन सिखाने वाले भाई हैं उनसे ये बातें सीखनी चाहिए, और इसी तरह खवातीन को भी आज के दौर में खवातीन से ये बातें जान लेनी चाहिए। बस दफा माँ खाला नानी बचपन से सीनी सीखी बातों को ही बुनियाद बनाकर गलत चीज़ों में पड़े रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, खुलासा क्या है आज की नशिस्त का जो हमने देखा? पहली बात है, नमाज बहुत अहम है। दूसरी बात है, नमाज से पहले तहारत है, और तहारत के लिए जो लाजमी चीज़ें थी, और सबसे बड़ी बात कि नमाज अव्वल वक्त पे अदा की जाएगी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दीन को पूरा का पूरा लेने, सीखने और सिखाने वाला बना दे। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो और हम बेहतरीन तरीके से दीन को सीखें और उस पर अमल कर सकें। खानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व तूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।